ओम शांति।
ओम शांति।
संडे की मूर्ति 6 तारीख नवंबर मास 2016 रिवाइज्ड मुरली है 28 अक्टूबर 1981 की। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशा है।
अक्टूबर
28/11/11 35 साल। सबसे पहला प्रश्न है, सारा वृक्ष कमजोर बनने का मूल कारण क्या है? वृक्ष जो है वो कमजोर हुआ है, उसका मूल कारण क्या है? कोई भी पेड़ यदि कमजोर हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है कमजोरी के?
आधार को कुछ ठीक से नहीं मिल रहा है खुराक।
कोई भी वृक्ष, बड़ा वृक्ष है वो कमजोर हो गया है, उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं? सारे कारण,
खाद पानी ठीक से नहीं,
एक तो खाद, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स उसको ठीक से नहीं मिल रहे, और कीटनाशक नहीं दिया है या अधिक दिया हुआ है, एक्सेस या डिफिशिएंसी दोनों ही कारण हो सकते हैं। और पानी ज्यादा, पानी कम, वाटर लॉगिंग हो रहा है या कम मिल रहा है, तो दोनों ही कारण है। तो एनवायरमेंटल, वातावरण से संबंधित कारण है पानी, खाद, उसके बाद खुदाई का क्या
गुड़ाई होती है
पानी देने के बाद
मिट्टी पर,
बड़ा वृक्ष बना हुआ है
उसके लिए
भी करना होता है। और कमजोर क्यों हो जाता है कोई वृक्ष?
जड़े खोखली हो रही है
या झाड़ को भी बहुत सारी बीमारी लगती है,
बहुत पुराना हो गया,
बहुत पुराना हो गया ये भी हो सकता है, या उसे भी कोई डिसीज, फंगल इन्फेक्शन, झाड़ के भी इन्फेक्शन होते हैं। और उसकी आयु अपनी फिक्स होती है, वो आयु पूरी हो रही है, पर्याप्त सूर्य किरण उसे नहीं मिल रही है, या फिर जोर से आंधी तूफान आ रहे हैं, या फिर ज्यादा बर्फ, ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है या गर्म हो रहा है, तो भी वो कमजोर होगा। और उसका तना कमजोर है, एक तो तना, बीज तो अभी रहा नहीं है क्योंकि बीज वृक्ष बन चुका है, तो उसका जो तना है वो कमजोर हो रहा है। तना और किन कारणों से कमजोर होता है? उसमें फिर से वही कीट,
बीज की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है,
बीज की क्वालिटी पर,
बीज से कनेक्शन।
बीज तो अभी रहा ही नहीं ना, बीज तो गया, अभी वृक्ष बन चुका है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं? एक झाड़ जो है वो कमजोर हो गया, दीमक लग जाती है, बीमारियां हो जाती है, या फिर आसपास वीड्स जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वीड्स, दूसरे जो झाड़ पौधे वो बहुत ज्यादा उग गए हैं और उसको खींच रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं।
हाँ,
दूसरों को दबा देता है, तो आसपास गैर जरूरी कहो या ऐसे जो वीड्स है वो उग गए हैं। क्या कहा? दूसरे लपेट लेते हैं, कोई पैरासाइट सा हो जाते हैं, उस पर अवलंबित आश्रय हो जाता है, उसका आश्रय ले लेते हैं और उसको खींच लेते हैं उसकी एनर्जी को, तो तब भी वृक्ष कमजोर हो जाता है। तो सारा वृक्ष कमजोर बनने का मूल कारण क्या है? यह तो हो गया संसार का वृक्ष, यहाँ बाबा किस वृक्ष की बात कर रहे हैं? ये वंशावली का वृक्ष है, इस वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है अगर हम कहें तो, और इसकी जो तना है इसमें दो पत्ते निकले हैं, उल्टा वृक्ष है ये, एक ऊपर बीज है, दो पत्ते हैं, और फिर तना है और फिर शाखाएं, उपशाखाएं, डाल, डालियां, पत्ते, ये सब कुछ है। ऐसा ये वृक्ष है। तो इस वृक्ष का जो मूल आधार, इस वृक्ष का जो मूल फाउंडेशन, इस वृक्ष का जिसको कहेंगे, जिस पर ये वृक्ष निर्भर है, वो क्या है? वो तना। पत्तों का कनेक्शन बीज से तो है, परंतु साथ साथ किससे भी है? तना से भी इसका कनेक्शन है। यदि बीज और तना शक्तिशाली है तो पत्ते भी शक्तिशाली होंगे। यदि ये तना कमजोर हो गया है तो वो पत्ते भी कमजोर होंगे। तो सारा वृक्ष कमजोर बनने का मूल कारण क्या रहा? कि या तो बीज या तो तना। बीज तो यहाँ पर बहुत शक्तिशाली है, कमजोर या कौन हो सकता है? तना यदि कमजोर हो जाए, यदि तना ही सूख जाए तो सारे पत्ते सूख जाएंगे। तो कौन किसको देख रहा है आज? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने वंशावली को देख रहा है। एक जगह कहा बेहद की वंशावली को देख रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात, हाँ वो तो है। किसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट? एक होता है ग्रैंडफादर, एक होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, एक होता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
दादा,
एक है दादा,
परदादा,
ठीक है, दादा के पिताजी, परदादा, परदादा के पिताजी, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर वहां इंग्लिश में नंबर लगा देते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने आए हैं। तो बाबा ने यहां स्मृति की बात कही। ये स्मृति में रहता है कि जिसको भी देखते हो, जिसके भी संपर्क में आते हो, तो ये स्मृति में रहता है कि हम मूल है, हम फाउंडेशन है, हम पूर्वज है, पुरखे है, बड़े है, अग्रज है, एंसेस्टर है, एल्डर है, ओल्डर है,
ओल्डर है।
ये याद आता है कि हम जो है हम बड़े हैं, हम जो है वो अग्रज है, हमारे सब अनुज है,
पितामह,
हम पितामह है। तो अभी एक प्रश्न इसमें नहीं है, पर हम वो प्रश्न अभी बीच में ला रहे हैं, जो पूर्वज है या फिर संसार की दृष्टि से जो बड़े हैं, जो एल्डर है, उनके क्या कर्तव्य है? या फिर इसको ये कहे कि जो पेरेंट्स है, अभिभावक, देख रेख करने वाले, ध्यान रखने वाले गार्जियन जो है, उनके क्या कर्तव्य है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पेरेंट्स? मार्गदर्शन करना। यदि हम बड़े हैं, पहले तो ये है, बाबा ने कहा जिसको भी देखो या जिसके भी संपर्क में आओ, क्या स्मृति होनी चाहिए? कि हम पूर्वज हैं, हम एंसेस्टर हैं। पहला, एक दूसरा प्रश्न है, हम पूर्वज क्यों है? पर पूर्वज, सीनियर, कुछ भी कहो,
पूर्वज क्यों
है? क्यों है फाउंडेशन में? चलो एक तुम और, पहले कौन आया है? हम पहले उतरे हैं, ये हमारे बाद उतरे हैं, इनके अनुभव कम है, इनके धूप में बाल इतने सफेद नहीं हुए जितने हमारे हुए
हैं।
बाद में आए हैं, लेट आए हैं, हम पहले आए हैं, इसके लिए हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, और ये हमारे सामने छोटे हैं, अनुभवी नहीं है इतने, हम अपने बुजुर्गपन के नशे में हैं, हम प्राउड है, बुजुर्ग है, प्रगल्भता है हमें, वो उनमें नहीं है, धूप में बहुत बाल सफेद हो चुके हैं हमारे, हमने ज्यादा दिवाली देखी है,
हमको ये
सबका अनुभव है। घाट घाट का पानी हमने पिया है, हर खेत की मूली हमने खाई है। हाँ तो हम वही कह रहा हूँ, हम अनुभवी है। एक तो प्रश्न ये था कि हम पूर्वज क्यों है, अब दूसरा प्रश्न है पूर्वज कहो या बड़े कहो अग्रज कहो, ऐसे जो एल्डर है ओल्डर है उनके क्या कर्तव्य। तो एक कर्तव्य सुनाया कि हम हमें मार्गदर्शन करना है सबको, बार बार वो भटकेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, परंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये उनका नकली फेस है, असली इससे परे है, अनादि आदि स्वरूप कुछ और है। ये जो क्रोध, ये जो लोभ, ये जो अशांति, ये जो दुख है, ये नकली फेस है, असली जो है वो इससे परे है। इसके लिए पहला कर्तव्य हुआ मार्गदर्शन करना, दूसरा कर्तव्य उनकी पालना करना, हर रीति से पालना करना। फिर उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती है, फिजिकल रोटी कपड़ा मकान से लेके सेफ्टी, उसमें भी हर तरह से सेफ्टी, फिजिकल मेंटल। फिर उनको पालना में बहुत विस्तार हम कर सकते हैं, हर तरह से उनकी पालना करना। और माता माताएं बता सकती है ज्यादा क्या कर्तव्य है बच्चों के प्रति आपका, इनको संभालना, उन्हें वो हो गया मार्गदर्शन कर दिया, और उन्हें प्रेरणा देना, श्रेष्ठ जीवन जीने की, श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा देना, उनके अंदर उनको सुसंस्कारित करना, संस्कार भरना। वो तो जैसे मिट्टी है ना, जो हम बनाएंगे, जो बीज डालेंगे वो उसमें उगेगा। हम आदर्श बनेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे। ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हमें खुद आदर्श बनना है। और पहली कौन की क्वालिटीज को पहचानना, अप्रिशिएट करना और उसे निखारना, उसका इंटरेस्ट किस में है, जबरदस्ती उसे कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करना, जो वो बनना ही नहीं चाहता वो उसको बनाना नहीं है। हम सोचते हैं, कोई पेरेंट सोचे कि मैं डॉक्टर हूं और मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर ही बनाना है और बना के ही छोड़ूंगा, तो कैसे होगा, जबकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें याद है हमारी बैच में एक हमारे मित्र थे, तो उनके पिताजी ने जबरदस्ती एडमिशन दिला दी थी, तो वो तो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उनका। 6 मास हो गया, 6 मास के बाद में, बीच में तो एक दो बार घर जाके आए, पर 6 मास के बाद में सीधा घर गए, फिर आए नहीं। एक बार हम सारे 2-3 लोग मिलकर उनको लेने गए, परंतु वो नहीं माना, उसके गांव में गए, उसको बहुत समझाया, चलो फ्री में सीट, फ्री गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, और वो उसने, पर वो कुछ नहीं, छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया, आया ही नहीं कभी। उसने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसका वो इंटरेस्ट पहचानना और उसे जबरदस्ती नहीं करना उसके ऊपर, क्योंकि हमें अच्छा लगता है या हम नहीं बन पाए इसके लिए उसको हम बना के रहेंगे। हमारी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि हम ये बने, पर हम नहीं बन पाए, तो हमारे सामने जो है उसको जबरदस्ती बना दे, ये भी ना हो। उसकी रुचि किस में, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो बहुत जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाते हैं एक, कि उसके घर में एक बार एक अजीब सा दूसरे देश से कोई पक्षी आ गया। उसने उस पक्षी को देखा, वो पक्षी अजीब था थोड़ा, ऐसे रंग का पक्षी, ऐसी चोच वाला पक्षी, ऐसा गाने वाला पक्षी, ऐसी हरकतें करने वाला, खेलने वाला पक्षी उसने कभी देखा नहीं था। उसने उस पक्षी को पकड़ लिया और कहा कि ये पक्षी हमारे देश में जैसे पक्षी है वैसा नहीं है, मैं इसे जरा ठीक कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, फिर उस पक्षी की थोड़ी चोंच काटी, क्योंकि उसके देश की जैसी वो चोंच नहीं थी। उसने देखा उसके पीछे ये यहाँ क्या होता है पक्षी को कुछ उसको कलगी, हाँ उसकी कलगी जो थी वो इतनी ठीक नहीं थी, तो उसने उस कलगी को भी थोड़ा काटा। फिर देखा अभी कैसा लग रहा है, अभी भी थोड़ा इतना ठीक नहीं लग रहा है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, तो उसने उसके पंख भी थोड़े थोड़े काटे, क्योंकि पंख थोड़े ज्यादा थे, हमारे देश के पक्षियों के पंख थोड़े कम है। और ये सब करने के बाद फिर कहा हाँ अब ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है, अभी ये परफेक्ट है। और फिर उसको कहता है कि अब उड़ो। कैसे उड़ेगा वो मर चुका था, लहूलुहान हो चुका था। तो हम अपने बच्चों पर, हमारे कौन से बच्चे हैं निखिलेश भाई दुनिया में जो भी है वो सब हमारे बच्चे हैं, हम सभी के पेरेंट्स हैं तो किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करनी, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, बताइए उन्हें मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरणाएं देना, उनकी योग्यताओं को पहचानना जानना और उसे कार्य में लगाना। और क्या कर्तव्य है पूर्वज आत्माओं के, उन्हें सहयोग सहयोग देना, तो चलो ड्यूटी है वो। उनकी गलतियां अगर वो करे तो ज्यादा चित्त पर नहीं रखना है, ज्यादा पकड़ के नहीं रहना है, ज्यादा उनको रिमाइंड नहीं कराना है बार बार कि तुमने ये गलती की तुमने ये गलती की। क्षमा भाव हो उनके प्रति, रहम अहम वहम तो वो सब ना हो, क्षमा हो तो वहम अहम छूट जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनके प्रति, और क्या करें, उनकी बात समझने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, वो कहने क्या चाहते हैं सुनना, वो सुनना चाहते हैं बस, उन्हें इच्छा है कि वो हमें कोई सुने, और उन्हें जीवन की शिक्षाएं देना, जीवन क्या है ये समझाना, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और उनसे भी सीखना कुछ कुछ बातें। उनके प्रश्नों को ऐसे नहीं टाल देना कि ये नहीं ऐसा ही है ये, उन्हें ये भी समझाना कि हमें जो प्रश्न वो पूछ रहे ऐसा नहीं कि हमें सब प्रश्नों का उत्तर पता ही है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें ही नहीं पता। उनके ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, आसमान नीला क्यों है, टोमेटो लाल क्यों है, ऐसे ऐसे उनके प्रश्न होते हैं कि हम पेरेंट्स को ही पता नहीं होते क्या उत्तर दे, वो कहते बस है। तो जो जो उनके प्रश्न हो उन्हें उनका समाधान करने का प्रयत्न करना, उनके जैसा बनना पड़ेगा छोटा थोड़ा सा, उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करना, और उनको वरदान ब्लेसिंग देना, उनका फ्रेंड बन जाना, उनका फ्रेंड बन जाना, और अपनेपन की अनुभूति कराना। उनका टीचर भी बनना है तो उनका गाइड भी बनना है, उनका फ्रेंड भी बनना है, मार्गदर्शक, और हम उनका भला ही चाहते हैं। नहीं तो हर बच्चे को लगता है ये मेरे दुश्मन है, जो भी मैं करता हूँ उसमें टांग अड़ाते हैं। नहीं, उनको गलत मार्ग से रोकना भी है, कुसंग से सावधान भी करना है, बचपन से ही वो संस्कार देने हैं और उनकी तरफ ध्यान रखना है, अटेंशन देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो उनके लिए टाइम देना पड़ेगा, वही तो नहीं दे पाते। मुंबई में जब पेरेंट्स निकल जाते हैं सुबह तो बच्चे सोए रहते हैं, और जब आते हैं रात को 11 बजे तब भी सोए रहते हैं, वो जो इंटरेक्शन है वो नहीं होता है। उन्हें धर्म की ओर अग्रसर करना, द फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, इंग्लिश में कहावत है, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वो साथ में रहता है, सब मिलकर प्रार्थना, ये भक्ति की बातें हैं। अभी यहाँ की बातें, हम पूर्वज है, हम पेरेंट है, हम मात पिता है, हम जगत पिता है, हम जगत माता है संसार के, हम मास्टर बीज रूप है, तो हमें क्या करना है अपनी वंशावली के साथ? बीज से लेके सहयोग वाली मुरली, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, क्या करना है? मैं मास्टर बीज रूप हूँ, आप समान विश्व कल्याणकारी हूँ, क्या करना है? रूहानी जल देना है, प्राप्तियों का जल देना है, अमृत वेले से ये सहयोग दो, हर तरह से सहयोग देना है, किसी भी रीति से सहयोग दो, पर हर श्वासोश्वास सहयोग। तो हमें क्या सहयोग देना है इस वृंशावली को? इनकी पालना करनी है, इन्हें शक्तियों का जल देना है, प्राप्तियों का जल देना है, सूक्ष्म शक्ति बाबा ने कहा है। और क्या कराना है? हमारे क्या कर्तव्य है? पालना करना, मार्गदर्शन करना, सर्व आत्माओं को विश्व की सही ठिकाना देना, भटक रहे हैं उन्हें जो चाहिए, जिस चीज की आवश्यकता, पहले तो उस आवश्यकता को समझना, अपने अनुभव सुनाकर भी सहयोग देना, ये भी उसी मुरली में कहा था। हम उनमें सहयोग दे अपने जीवन के अनुभव सुनाकर, कि जहां वो दौड़ रहे हैं, कोई एक अच्छी कहावत थी ना कि मैं तुम्हें ज्यादा सलाह देता हूं इसलिए नहीं कि मैं बहुत होशियार हूं, पर इसलिए कि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। मैं तुम्हें ये शायरी के रूप में, पर वो शब्द हमें याद नहीं, परंतु ऐसा ही भाव है उसका, कि सलाह मैं देता हूँ इसके लिए नहीं दे रहा हूँ तुम्हें कि ज्यादा होशियार हूँ, क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है, और गलतियों में तो हम ही, तो वास्तव में वैसे भी तो द्वापर से किसने सारा विकारों को चालू किया? वाम मार्ग में वो क्रिश्चियन धर्म वाले थोड़ी गए, वो इस्लाम धर्म वाले थोड़ी वाम मार्ग में गए, सबसे पहले वाम मार्ग का सूत्रपात किसने किया? हमने ही किया है, हम ही थे वो जो संसार को विकारों के दलदल में ले गए द्वापर से, उन्होंने तो हमारा अनुसरण अनुगमन बाद में किया, वो तो पवित्र आत्माएं उतर के आई थी नीचे,
हमने पवित्र बना दिया।
तो क्योंकि गलतियां हमने ज्यादा की है, इसके लिए अभी हमें, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि दूसरों को सिखाए ताकि वो गलतियां ना करे। तो और क्या कर्तव्य है इस वंशावली के प्रति हमारा? वंशावली के प्रति कहो, बेहद की वंशावली के प्रति कहो, पत्तों के प्रति कहो, उन्हें न्यूट्रिशन देना, अपनेपन की भावना, और
उनमें ताकत भरना,
उनमें शक्ति भरना, कमलेश भाई उमंग उत्साह भरना, राह दिखाना, इस पर कई बार हमने चर्चा की है, ब्राह्मणों के जो कर्तव्य है इसमें सारे कर्तव्य आ जाएंगे, उन्हें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, प्रभु मिलन, ईश्वरीय प्राप्ति, अनुभूति, वैराग, संसार के प्रति सत्य ज्ञान देना, ज्ञान से पालना करना, रोटी कपड़ा मकान, कौन सी रोटी, कौन सा कपड़ा, कौन सा मकान, इसका चिंतन किया जा सकता है। तो ये सारे कर्तव्य, अभी वापस उसी प्रश्न, पहला प्रश्न तो हो गया था, दूसरा प्रश्न है, ये था पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में और दो तीन प्रश्न निकले। दूसरा प्रश्न, क्या होते हुए भी कौन सी नींद आंखों में नहीं है? सब कुछ है परंतु नींद नहीं है, अनिद्रा के क्या क्या कारण है? 10 कारण बताओ संसार की आत्माओं के, और फिर दूसरा, एक दूसरा टॉपिक है ब्राह्मणों में अनिद्रा के कारण, वो थोड़ा सूक्ष्म टॉपिक है, वो किसी को होमवर्क देंगे किसी फिर। ब्राह्मणों में अनिद्रा के कारण, बेचैनी के कारण, दुख के कारण, वो दूसरा ही टॉपिक है। अभी पहले संसार का बताओ कि क्या क्या है संसार की आत्माओं के पास? सब कुछ है,
चिंता बहुत है,
नहीं, सब कुछ होते हुए भी आंखों में नींद नहीं है। क्या क्या है? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, साधन, सुख, मित्र, संबंधी, टेक्नोलॉजी, क्या कुछ नहीं है, डिग्री या पद, पोजीशन, क्या कुछ नहीं है, परंतु उसके बाद भी आंखों में नींद नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता तो तुम्हारे मस्तक पर संतुष्टता बोर्ड में दौड़नी चाहिए, बाबा ने कहा है, मस्तक के बोर्ड पर संतुष्टता दौड़नी चाहिए।
निरंतर दौड़।
ऐसी संतुष्ट मूर्तियां मधुबन निवासी अर्थात सर्टिफिकेट बोर्ड स्लोगन स्लोगन ऐसा दौड़ना चाहिए, संतुष्ट रहना और करना है। तो सब कुछ है परंतु नींद नहीं है। क्या कारण है इस अनिद्रा के? इच्छाएं बहुत है जो सोने नहीं देते, बेचैन रखती है। भय है, क्या भय है समझ में नहीं आता है। भय इथले संपत नाही, क्या भय है ये पता ही नहीं। और विकर्म वो तो सबसे सूक्ष्म कारण है और सबसे अंत में आना चाहिए, पहले दूसरे कारण
भविष्य की चिंता रहती है।
भविष्य की चिंता है और सातवीं पीढ़ी का क्या होगा उसकी चिंता बहुत लगी हुई है। और आराम इतना है दिन भर, वास्तव में अनिद्रा अच्छा है, नहीं आनी चाहिए। उसमें बेड पे इधर उधर होते रहेंगे उतनी एक्सरसाइज होंगी, दिन भर तो एक्सरसाइज करते नहीं। एक रीति से अच्छा है वो, दिन भर एक्सरसाइज जो नहीं करते उनको ज्यादा आती है। जो दिन भर काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं खाली, उनको कहाँ से नींद आने वाली है? नींद तो उसको आती है, देखो खेत का किसान कैसी अच्छी गहरी नींद में सोता है। उसकी नींद को देखकर कोई करोड़पति ईर्ष्या में से जल उठे। वो फुटपाथ पर देखो कैसे सोते हैं लोग, आराम से निश्चिंतता से। और लोग यहाँ सब कुछ है परंतु नींद नहीं है, नींद की भीख मांगते हैं, दे दो थोड़ी नींद दे दो। दवाइयां खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। नहीं नहीं, हम ब्राह्मणों की बात इसके लिए पहले ही क्लियर कर दिया, ये संसार की आत्माओं की बातें चल रही। नहीं, प्रश्न नींद आने का नहीं, न आने का चल रहा है, आने का नहीं चल रहा है। टॉपिक है अनिद्रा, इनसोम्निया, दोनों तरफ अलग चले गए आप। शंका, शंका हो तो क्या होगा? निगेटिव बहुत ज्यादा चलता है, पॉजिटिव कम चलता है, तो अनिद्रा के शिकार बनते हैं। आपसी टकराव, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, रूठते हैं आपस में, चेहरा उधर कर देते हैं और सर्विस उड़ जाती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी नींद नहीं आती है। किसी की दूसरे की नींद हराम कर रखी है? नहीं, पर लोग अच्छे से सोते हैं दूसरे की नींद हराम करके। हाँ, इच्छा, अपूर्ण इच्छा है, अतृप्त इच्छा है, अनिद्रा और हाँ बीमार, बीमारी आ जाती है तो भी नींद नहीं आती है। दर्द होते रहा, कोई बीमारी में सब आ गया, और या फिर दुख, कोई रॉकफेलर, अमेरिका का जो गवर्नर था और बाद में वाइस प्रेसिडेंट हुआ था, उसका जो बेटा था, अभी वो करोड़पति आदमी माइकल रॉकफेलर, उसका जो बेटा था वो गुम हो गया था और बाद में पता चला नरभक्षियों ने उसे मार दिया। उस पर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी किताबें और क्या कुछ नहीं बनाया। कहां वो चला गया माइकल रॉकफेलर? और रॉकफेलर का, उसके पिताजी का जीवन बाद में निकोलस का बहुत दुखमय रहा। इतना ज्यादा अटैचमेंट था बेटे से, वो चला गया बाद में अनिद्रा। मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, बॉक्सर था या पहलवान जो था, उसको भी बाद में पार्किंसन नाम की बीमारी हुई थी, बहुत दुखद। महमूद फिल्म एक्टर, अपने पीठ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमता था, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन थोड़े देर के लिए कम हो गया तो सांस फूल जाता था। ऑक्सीजन सिलेंडर था उसके, और O2 होम ऑक्सीजन थेरेपी जिसको कहते हैं।
मोहम्मद रफी
ने महमूद, और तो इस तरह से संसार में धन है, सब कुछ है, परंतु वो चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सुख नहीं है, सच्ची शांति नहीं है, प्यासी है आत्माएं। तो अनिद्रा के कारण ये बहुत सारे कारण है। और बेचैनी है, कोई कोई ऐसी अनिद्रा के कारण है जिसमें कोई टेंशन नहीं है फिर भी नींद नहीं आती, उसके लिए फिर कह सकते पूर्व जन्म के। आलसी को तो नींद ही करते ज्यादा।
सोने में आलस करते हैं, टाइम पर नहीं सोएंगे,
टाइम पर नहीं सोते, रूटीन जिनका सेट नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी कहाँ जाना, तो वहां से कहाँ से नींद आएगी। संग दोष साइंस के साधन में ही लगे हुए हैं, एक एक दो दो बजे तक लैपटॉप, मूवीज और टीवी ये सब में लगे हुए, तो कहाँ से शॉपिंग, घूमते रहते हैं सड़कों पर गाड़ी लेकर रात रात भर। मुंबई में जाओ तो रात को 2 बजे देखो या 3 बजे देखो, ट्रैफिक है ही है, मुंबई नेवर स्लीप्स, कभी सोता नहीं है। तो हमेशा वो लोग घूम ही रहे, भटक ही रहे, भाग ही रहे, नींद नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं चल रहे, संबंध में टकराव है, मनमुटाव है, तब भी नींद नहीं आती है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी आंखों में नींद नहीं है, तो क्या यहाँ तो प्रश्न है क्या होते हुए भी, तो ये सब कुछ है उनके पास, सुख है, साधन है, संपत्ति है, मित्र है, संबंधी है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, पर वो नहीं है, ये सारी चीजें है, दवाइयां बहुत है, नींद नहीं है। पर तीसरा प्रश्न, आजकल कौन सी प्यास होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं? यही प्यास है, हर एक व्यक्ति की प्यास किसकी है? सच्ची सुख की, शांति की, प्रेम की, प्रेम भी नहीं है, संबंधों में कड़वापन है, स्वार्थ बहुत है, कोई भी सुखी नहीं है संसार। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं, ऐसे समय पर आप पूर्वजों का क्या कर्तव्य? संसार में सब जगह ढूंढा, हर जगह लगा ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, पर हर बार पहुंचने के बाद फिर लगा नेति नेति, ये अनुभव हो रहा है, ये भी नहीं, नॉट दिस नॉट दिस, जो भगवान के लिए उपनिषदों में कहा है नेति नेति, बाबा ने वो यहाँ प्रयोग किया संसार की आत्माओं के लिए, कि उनके मिल नहीं रहा है सुख क्या है, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, भटक रहे। अच्छा, जो लोग सोचते हैं धर्म में सुख मिलेगा, धर्म में भी कितना कलह है, किस धर्म के पास जाए, हर एक कहता है हमारा ही राइट है, इधर आ जाओ, बाजार लगा पड़ा है यहाँ स्पिरिचुअल बाजार, कितने हजारों, उसमें धोखा, इतना इतना धोखा है, पता ही नहीं चलता ये क्या है। और आज की तो दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा, वो पहले जमाने में जैसे सन्यासी थे आप कहाँ रहे वैसे सतोप्रत, हाँ तो आज आजकल तो मतलब ऐसा उनका प्रचार हो गया कि वो दिखा तो उनको ढोंगी समझते हैं बाय डिफॉल्ट। सवादु तो उनमें भी भोग लिप्सा, स्वाद लोलुपता, ये कितना बढ़ गया है।
तो निर्मल बाबा जी बोलते हैं आप समोसे चढ़ा दो।
तो इस वजह से सब जगह जाते हैं परंतु शांति कहीं नहीं मिलती, सुख कहीं नहीं है। तो ऐसी अनुभूति, ऐसे समय पर हमारा क्या कार्य है, ये प्रश्न है। क्षमा बन, क्या करना है, ठिकाना, और ज्योति बन, अमर ज्योति बन, रास्ता बताना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना या ठिकाना देना, ये हमारा कार्य है। तो बाबा यहाँ हमको कह रहे हैं क्षमा बनने के लिए, आगे मधुबन निवासियों के से कहा है लाइट माइट का गोला, चैतन्य लाइट हाउस।
उस समय में लखनऊ वाले, अच्छा, उनके कुमारों का आह्वान आर्टिकल पूरा छाप दिए थे, ओम शांति के लिए,
पुराना आर्टिकल है वो,
नहीं
हाँ हाँ वही ना, पुराना है वो काफी, कुमारों का आह्वान ना, बहुत अच्छा है वो पुराना। तो हमारा कर्तव्य उन्हें राह दिखाना, जो भटक रहे हैं, हमें खुद क्षमा बनना है। अभी एक क्षमा की आकर्षण है, आगे मुरली में कहा है फिर अनेक क्षमाओं की आकर्षण हो जाएगी, सब क्षमाओं की आकर्षण तब हो जाए, ऐसा होना है। फिर है आप पूर्वजों की, फिर यहाँ चार चीजें बोली है कि वृत्ति दृष्टि स्मृति कर्म से क्या होगा, हमारी वृत्ति से क्या होगा, विश्व का वातावरण परिवर्तन होगा, क्योंकि हम तना है तो हमारी जैसी वृत्ति होगी, इस संसार का वातावरण बदलेगा। फिर है हमारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से ब्रदरहुड की स्मृति उनमें आएगी, उनमें भी विश्व बंधुत्व का भाव जागृत होगा। अभी वैर भाव है, वैमनस्य एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत सारे भाव भरे हुए हैं। स्मृति, हम अगर बाप को याद करते हैं, देखो हमारे योग का कितना महत्व है, हम इधर बाप को याद करते तो उन्हें लगेगा कि हमारा बाबा आ गया, ये अनुभव उनको उधर होगा, हमने कुछ किया ही नहीं, ना संदेश दिया ना बोला ना कुछ कहा, संपर्क में भी नहीं आए, केवल हम बाप की याद में हैं, तो उन्हें वो अनुभव हो रहा है कि हमारा बाप आ गया। ये तो सबसे आसान सेवा है, कोई खर्च ही नहीं है इसमें, कोई कंपटीशन भी नहीं, कोई पी आगे चला जाए ऐसा कुछ नहीं, हम जितनी मर्जी चाहे उतनी कर सकते हैं।
इसमें पता चल जाए कि याद में कोई आगे जा रहा है अंदर से, तो फिर कैसे पुरुषार्थ करेंगे?
क्या क्या
याद में कोई आगे चला जा रहा है, दिखता नहीं अंदर से?
नहीं दिखता, याद गुप्त है।
अगर दिखता है तो,
दिख जाए तो
क्या करेगी, जरा कीजिए वो
फिर है स्मृति, फिर है श्रेष्ठ कर्म, चरित्रवान बनाए उन्हें, हमारे श्रेष्ठ कर्म चरित्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का कुछ तो एक शब्द कहा है वहां पर, वो उनमें उमंग सुभाष उनमें पैदा करे। तो ये चार चीजें हैं, वृत्ति दृष्टि स्मृति और कृति, हमारे कर्म उन्हें, हम चाहे सिखाए या ना सिखाए, मधुबन वालों को कहा ना मास्टर शिक्षक बन जाना है, मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना, चाहे साधारण कर्म करो या श्रेष्ठ कर्म करो सिखाओगे, मास्टर शिक्षक और मास्टर सद्गुरु पर, ये दो कर्तव्य अभी रहे हुए हैं, दो पार्ट अभी रहे हुए हैं, तो ये पार्ट अभी प्ले करना है कि हम मास्टर शिक्षक है, जैसे वो वॉकिंग चलती फिरती क्या होती है लाइब्रेरी, वैसे तुम वॉकिंग टॉकिंग मूविंग लाइब्रेरी हो। अब बेहद के स्मृति स्वरूप क्यों बनना है, उसकी विधि क्या है, बेहद के स्मृति स्वरूप क्यों बनना है, क्योंकि वो आवाज हम तक आ रही है उन आत्माओं की, वो क्योंकि यहाँ पे चार बातें बाबा ने कही है, तीन चार बातें, कि उनकी शुभ आस को हमें पूर्ण करना है, एक तो उनके अंदर ये चाहना है, उनके अंदर वो याद कर रहे हैं कि शक्ति मिल जाए, चाहना है शक्ति शुभ आस शुभ संकल्प वो हमसे लेना चाहते हैं। और दूसरा एक दूसरा पार्ट है इसका, बेहद के स्मृति स्वरूप क्यों बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि हमारी स्मृति, क्योंकि हमारी स्मृति ये जो चार बातें ऊपर कही थी वो कर देगी, क्योंकि हमारी स्मृति से, एक जगह बोला है हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तो स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थि स्वरूप, एक जगह बोला ये स्मृति स्वरूप ही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, एक जगह बोला है कि आगे क्या करना है इसकी स्मृति स्वरूप बनो, एक जगह बोला है कि क्यों बनना है, इसका कारण क्यों है, क्या है कि हम यदि स्मृति स्वरूप है तो हम जो भी करेंगे हमें वो देखेंगे या फॉलो करेंगे, एक भावार्थ तो उसका ऐसा ही है जो चार चीजें ऊपर कही है ना, उसके वाक उसके पहले ही एक लाइन बाबा ने कही है कि तुम जो कुछ करेंगे तुम्हें देखकर वो भी करेंगे या उसका प्रभाव उन पर होगा। तो और उसकी विधि क्या है फिर बेहद के स्मृति स्वरूप बनने की, विधि विधि इसमें बाबा ने ज्यादा मुरली में इसका इतना विस्तार नहीं है, परंतु इस प्रश्न का काफी विस्तार किया जा सकता है। इसकी स्मृति, इसकी विधि क्या है? बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, बाबा ने कह दिया एक जगह। फिर उसमें वो सारी बहुत सारी बातें कि ये उल्टा वृक्ष का उदाहरण दिया है कि बीज, दो पत्ते और तना, और इसके लिए ऊंची स्टेज है, ऊंची स्थिति है, ऊंची स्टेज पे है तो फिर बचपन की बातें, बचपन के अलबेलेपन की बातें समाप्त हो जाती है, व्यर्थ की बातें लगने लगती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अलबेलेपन, अपना बुजुर्गपन की स्मृति में रहना है, अनुभवी मूर्त बनना है, बुजुर्गपन की स्मृति में रहना है। तो इसका भाव यही रहेगा कि विधि उसकी क्या है, निरंतर हम याद रखें कि हम कौन है। ये जो वंशावली है, हम पूर्वज है, हम मूल है, मूल आधार है, फाउंडेशन है, तना है, बुजुर्ग है, ये सारी पॉइंट्स यहाँ याद रखनी है। ये याद रखते ही वो सब कुछ हो जाएगा। और एक चार बातें जो ऊपर ली है, वृत्ति को श्रेष्ठ रखना, दृष्टि को वैसा रखना, स्मृति को बाप की याद में, और श्रेष्ठ कर्म हो, तो ये विधि है कि वो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति के संबंधित सात बिंदु कौन से है, आप ही बताओ। ये खतरनाक प्रश्न डाला है, कहाँ है इसका उत्तर? उत्तर तो अभी जितनी चर्चा की उसी में अलग अलग जगह आ गया है। एक जगह बोला है बाबा ने कि स्मृति रखो आगे क्या करना है, एक जगह बोला है स्मृति रखो कि ऑक्यूपेशन तुम्हारा क्या है, एक जगह बोला है कि स्मृति रखो कि सामने कौन है, स्मृति रखो कि हम कौन है, स्मृति रखो कि वो जब देखते हो तो क्या स्मृति में आना चाहिए, वही पूर्वज है, फिर ब्रदरहुड की स्मृति, स्मृति से समृद्धि, यही सारी अलग अलग जगह पर बातें हैं।
बिंदु बेहद की स्मृति शुरू बनो, स्मृति त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध की स्मृति।
हाँ, ये भी एक है कि त्रिमूर्ति के साथ संबंध है इसकी स्मृति, वही अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों में वही कहे।
पेपर
आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता क्या है? सूक्ष्म शक्ति। संसार की आत्माओं के पास भी, उनके पास कौन सी शक्ति है? साधनों की शक्ति है, वाणी की शक्ति है। हमें उन्हें वो नहीं चाहिए जो है उनके पास। उस दिन इंदु बहन कह रहे थे ना कि वो डांस देखना नहीं चाहते, डांस तो वो हमसे अच्छा कर सकते, कल्चरल प्रोग्राम। वो यहाँ किस लिए आए हैं? वही उनको चाहिए, उनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, और हम उन्हें कल्चरल प्रोग्राम दिखाते हैं जो वो हमसे अच्छा कर सकते हैं। हम उन्हें वो सारी, हम सोचते ये लोग नाराज ना हो जाए। हाँ, हम उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खिलाना चाहते, जबकि वो इससे भी अच्छा खा सकते, परंतु हमारा, चलो उसके पीछे भाव दूसरा है, परंतु वही हमारा फोकस या अटेंशन ना हो केवल। हम उन्हें यहाँ की टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस करना चाहते, हमारा ये भी है, हमारा वो भी है, हमारा ऐसा भी है, हमारा वैसा भी है, हमारे गीत इसने गाए हैं, हम इस तरह से इम्प्रेस करना। खाली ज्ञान योग की बातें छोड़ के कोई कोई बस इसी पे फोकस करते, ये हमारा कॉम्प्लेक्स इधर भी एक है, नीचे भी है, उधर भी है, ये भी है, हॉस्पिटल भी है, ये भी है, म्यूजियम भी है। ये कोई मेन आधार ये थोड़ी है, मुख्य आधार जो है ये नहीं है हमारा। हाँ, बड़े बड़े तो यहाँ की, ऐसा नहीं कि हमारे पास, हम सोचते इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास ही है, इससे भी अधिक टेक्नोलॉजी दुनिया वालों के पास है। आप अलग अलग धार्मिक संस्थाओं में जाओ, वहाँ तो और भी क्या क्या है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ का बहुत बड़ी बड़ी चीज, कितना क्या 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 बनाया है, एस्कॉन के मंदिर और ये सारे जो बड़े बड़े है, बहुत सारी संस्थाओं में इतना, उनके भक्त लोगों में तो भावना यहाँ से भी ज्यादा रहती है। ये तो ज्ञान मार्ग है, चलो ज्ञान मार्ग में थोड़ी भावनाएं थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ भक्ति की बातें नहीं सिखाई जाती है, वो तो सारा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में तो इतना भावना, इतनी भावना का समुन्दर बहता है उधर, उधर तो लोग क्या कुछ करने को तैयार नहीं होते। तो क्योंकि हम केवल यहीं रहते और केवल यही देखते हैं, इसके लिए हमको लगता है यही बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को वो सब नहीं चाहिए, उनको सुख चाहिए, वही देना है जिसलिए वो आए। हम उन्हें और दूसरे रीति से इम्प्रेस करना चाहते हैं। हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, हमारा इतना बड़ा कैंपस है, हमारा इतना बड़ा सोलर है, हमारा इतना बड़ा मीडिया का विस्तार है, टीवी चैनल्स, हमारे यहाँ इतनी सारी ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज है, इतने बड़े बड़े हमारे ये हॉल है, यहाँ एक एक घंटे में ऐसा गीत बजता है, ये सब चीजों से हम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। इससे नहीं इम्प्रेस होने, वो तो कई लोग तो सीधा कहते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हो, ये तो सब संसार में भी है। हमें याद है एक बार हमने जब कॉलेज में, उधर कॉलेज में थे, तो एक बार ऐसे ही कह दिया था कि हमारे यज्ञ के गीतों को बड़े बड़े गायक हैं उन्होंने गाया है, और तो उसने पूछा था वो लोग पैसे लेते हैं क्या, तो हमने कहा शायद लेते ही होंगे। तो वो बोले ये कैसी संस्था है आपकी, पैसे देते हो और दूसरे से गवाते हो, मतलब छोटी सी बात है। पर फिर हमको लगा कि ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी एक अहंकार है कि हमारी संस्था के गीत किसने इसने गाए हैं। तो ये सब चीजें नहीं चाहती आत्माएं। तो आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता क्या है, सूक्ष्म शक्ति, चार शक्तियां बताइए कौन सी, शुभ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह की दृष्टि और सहयोग की दृष्टि, ये हमारी शक्तियां हैं, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारी। आत्माओं को ये चाहिए, स्नेह, सहयोग, शुभ संकल्प और शुभ वृत्ति, ये इंप्रेस करेगी उन्हें। चलो बाकी जो भी चीजें आज यज्ञ में, उन सबका अपना अपना महत्व है, परंतु बाबा के महावाक्य है सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे ही करेंगे। मीडिया, साधन, ये सारा जो है ये सेवा का अपना एक तरीका है, परंतु प्रत्यक्षता जो होने वाली है वो इनसे थोड़ी ना होगी। प्रत्यक्षता तो आत्मा की पावर से होगी, बल से होगी। दूसरा है साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है, ये चार शक्तियां ऐसी है जो सीधा जीवन परिवर्तन करेगी, सीधा जीवन परिवर्तन। किसी को कितने भी भाषण सुनाओ, कुछ भी कराओ, वो थोड़ी ना चेंज होता है, परंतु हाँ किसी का जीवन ही देख ले बिना उसको उससे बात किए परिवर्तन हो जाता है, केवल देखकर कि ऐसी जबरदस्त इनके जीवन में धारणा है। मुख के सौदे में और दिल के सौदे में क्या फर्क है, यहां बाबा ने बहुत सारी दो दो चीजें बताई है। एक कहा है मुख का, एक है वाणी का बम, एक है प्राप्ति के अनुभूतियों का बम, वो तो बेबी बम है। फिर एक जगह कहा है मुख का आवाज और दिल का आवाज, ये संसार की आत्माओं के लिए कहा है, उनका मुख का आवाज निकल गया है, मुख का आवाज की अच्छा है, परंतु दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है, ये दूसरी पॉइंट। तीसरी एक जगह कहा है मुख का सौदा दिल का सौदा, मुख का सौदा करने वाले दुनिया में बहुत है, दिल का सौदा करने वाले कोटों में कोई है, और तुम दिल वाला बाप के बच्चे हो, केवल तुम ही हो। और एक पॉइंट है आवाज, मुख की आवाज दिल की आवाज नहीं, एक तो आवाज, एक सौदा, एक बॉम्ब, और नहीं हाँ वो उसी में है वो, पर एक वो वही है पर वो आगे है कि वो ये कहते हैं कि अभी कहते हैं कि सुनाते अच्छा, फिर कहेंगे बनाते अच्छा है, ये उनकी तरफ से
सुनाते बनाते,
फिर अभी कहते हैं कि कुछ सुना, कुछ अच्छा, कुछ पर उससे अच्छा कुछ पाया, यह अनुभव करेंगे आत्माएं। तो मुख के सौदे में दिल के सौदे में यह सब अंतर है। किस विधि से सिद्धि स्वरूप बनेंगे, कम खर्च, कम समय, कम शक्ति, एडिशन कर दो कम मेहनत, वो हमेशा जो बाबा कहते हैं मेहनत भी कम हो, शक्ति भी कम हो, समय भी कम हो, खर्चा भी कम हो, तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। कौन सी नवीनता करने से आपका काम सहज हो जाएगा, वहां पे उदाहरण दिया है बाबा ने, साइंस का उदाहरण जो दिया है ना, साइंस क्या कर रही है, सूक्ष्म और स्थूल विस्तार को सार में ला रही है। सैटर्न 2 नाम का एक मिसाइल निकला है जो कि रशिया ने बनाया है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब डाला गया था उससे 2000 गुना अधिक शक्तिशाली है सैटर्न 2। अभी चार एक हफ्ते के अंदर के न्यूज़पेपर में है कहीं ना। सैटर्न टू नाम है उसका, रशिया ने बनाया है। जापान को तो पूरा ही खत्म कर सकता है वो, और उसमें एक चीज कही है यूएस को पूरा तबाह कर सकता है। और वो कितना कितने तो भी 10,000 किलोमीटर की दूरी से, मतलब ऐसा कुछ बोला है उसने कि इसे फेंका जा सकता है अनडिटेक्टेड। तो इतना शक्तिशाली अभी बना है। तो बाबा यही वही कह रहे हैं कि सूक्ष्म, पहले ज्यादा शस्त्र लगते थे, ज्यादा समय लगता था, ज्यादा मेहनत लगती थी, अभी कम इसमें यह सब हो सकते हैं और शक्तिशाली शस्त्र बना सकते हैं। तो तुम सब कौन हो? मास्टर निर्माता हो, मास्टर रचता हो, सॉरी, तुम मास्टर रचता हो। मैं तुम्हें सूक्ष्म से स्थूल साधन निर्माण करना है, सूक्ष्म से स्थूल साधन कार्य में लाना है। ये बहुत पावरफुल वाक्य है, पूरी मुरली का ये वाक्य जो है ना, ये बाबा ने कहा ये विधि है सारा, ये सारा जो मुरली चल रहा है इसकी विधि क्या है? आत्मा, ये मुरली एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ हम है, एक तरफ संसार की आत्मा है, इनके इन दो के बीच में ये मुरली है। उनको क्या चाहिए, हमें क्या देना है, हम कैसे है, वो कैसे है, उनकी पुकार क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इस बीच ये मुरली चल रही है दोनों के बीच। तो उनको तो क्या करना है, सूक्ष्म से स्थूल साधन निर्माण कर कार्य में लगाना है। इस पर हम बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे और, क्योंकि ये टॉपिक जो है स्थूल से, इसको कह क्या रहा है बाबा इसमें, किसने चिंतन किया इसके ऊपर? हमने इसको कल के चिंतन के लिए छोड़ के रखा है अभी, क्योंकि बाकी बहुत सारा था। स्थूल से समय का अभाव था आज। क्या कहा है, सूक्ष्म से स्थूल साधन निर्माण कर कार्य में लगाओ, सूक्ष्म से स्थूल कार्य निर्माण करो, इसमें चिंतन की आवश्यकता है, करेंगे इसके ऊपर चिंतन। फिर कहा है कि स्थूल शक्ति सूक्ष्म शक्ति, जैसे स्थूल जो होता है वो बीज छिप जाता है विस्तार में, इसके लिए तुमको क्या करना है, तुम्हारी अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, इसी का विस्तार किया। किस विधि से ये हो गया, कौन सी नवीनता, कौन कहाँ आकर क्या ये हो, यहाँ तो मुरली पूरी हो गई, फिर पंजाब का है। तो इस मुरली का सार, आत्माओं को जो चाहिए वो देना, आवश्यकता जो है उसकी आवश्यकता और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। फिर वहां पे और पंजाब के पास थोड़ा विस्तार किया इसी का, हम प्राप्ति स्वरूप तो वो भी प्राप्ति स्वरूप, हमारा गीत क्या है, पाना था सो पा दिया, तो उनका भी वो गीत हो, यही वो चाहते हैं। उनको वो दो जो उनको चाहिए, आप अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो, वो नहीं दो जो उनके पास है, ये भी एक जगह कहा है। तो क्या सरेंडर कराएंगा, कौन कहाँ आकर क्या सरेंडर कराएंगे, पंजाब यहाँ आकर सबको सरेंडर कराएंगे, फिर यहाँ और क्या समाएंगे, नदियां इधर समाएंगे, इसका मेला पंजाब की नदियां, पांच नदियां हैं, कौन सी, पंजाब, पंज अर्थात पांच, उसकी दो अभी पाकिस्तान में है, झेलम और चिनाब, सतलज व्यास और चिनाब और झेलम पाकिस्तान चली गई, तीन इधर है, सतलज व्यास और रावी, ये तीन अभी पंजाब में है। गुप्त, वर्तमान समय आत्माओं की आवश्यकता क्या है, आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य क्या है, उनकी जो आवश्यकता है, उसमें यही कहा है कि ये जो गीत गाए, सभी ये गीत गाए, वो भी प्राप्ति स्वरूप हो जाए, उन्हें भी वो सब मिल जाए, जैसे हम खुशी है, नशा और खुशी हमें है, वैसे उन्हें भी हो जाए प्राप्ति स्वरूप, यही उनकी आवश्यकता है। संगम युग के जीवन की विशेषता क्या है, इसी खुशी नशे में रहना प्राप्ति के। मधुबन निवासी अर्थात मुरली के अनुसार 12 टाइटल बताओ, चलो बताओ, आपसे चालू करते हैं, इन्हीं ने आपने निकाले है प्रश्न, सॉरी कमलेश भाई बोलो, 12 टाइटल, 12 नहीं है तो और दो तीन है, 13-14 है,
अभी तो बोलो
बोलो बोलो,
नॉन
स्टॉप बोलो पूरे, नहीं नहीं शर्माने की बात नहीं, बोल दो,
चैतन्य लाइट आवर्स पूर्वज,
इधर उधर से नहीं, शुरुआत से चालू करो, जैसी मुरली है वैसी उसी अनुसार पैराग्राफ वाइज, सबसे पहले तो सागर का कंठा है, क्यों, क्योंकि ये पंजाब से मुलाकात हो रही है ना, तो वो नदियां और ये सागर ये मिल रहे, इनका ये कंठा है, तो तुम कौन हो? खुश नसीब हो। क्यों खुश नसीब हो? क्योंकि बाप भी है तो श्रेष्ठ आत्माओं का भी संग यहाँ है, तो इसके लिए तुम सागर के कंठे पर। ये पहला। दूसरा क्या है? नहीं, ये सागर के कंठे में वही तकदीरवान हो, ये पहला हो गया। दूसरा है मुख मीठा, तुम मीठे हो, मुख मीठा है करने वाले, मधुबन निवासी, मधु समान मीठे। दो। तीसरा है फिर से सागर के कंठे में आ गए बाबा, होली हंस हो। क्या ग्रहण करते हो? रतन। वो कंकड़ को तो देखते भी नहीं हो, ग्रहण करते हो रतन को और होली हंस। एक जगह रतन बोला, एक जगह एक दूसरा शब्द प्रयोग किया बाबा ने, वस्तु नहीं, वो आगे है महान आत्मा के पास। फिर ये हो गया तीसरा सामान। फिर उसके बाद में संजय भाई नेक्स्ट सामान क्या? नहीं है सामान है ना, तो बोलो ना। फिर उसके बाद में महान आत्मा, महान वस्तु को देखने वाले हो। और सबसे महान वस्तु कौन सी है संसार में? शाहू भाई कौन सी वस्तु महान है सबसे? आत्मा। तो तुम आत्मा देखने वाले, आत्मा
महात्मा,
महान कर्म करने वाले, महात्मा वही महान कर्म करने वाले, बोलने वाले, महान भूमि पर। वैसे मुरली में नहीं है पर राइट है,
शुरू कर देंगे तो
रुकेंगे नहीं फिर। तो महात्मा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपक, आशाओं के दीपक। ये हो गए छह। अभी यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज है और फिर महिमा की बातें बाबा कर रहे हैं। कितनी महिमा गाए, महिमा गाए तो करनी भी, निभानी भी पड़ेगी। पर इसके लिए बाबा ने कहा अगर तुम्हारी महिमा गाए तो तुमको तुम्हारी निभानी भी पड़ेगी। तुमको अगर तुम्हारी महिमा हम गाते हैं तो, बाबा अगर गाता है तो। फिर यहाँ और कौन सी बात कही, और कौन से सामान यहाँ कहे? हाँ, फिर यहाँ उसके पहले एक शिक्षक का रह गया है, वो छठवा था मास्टर शिक्षक, उसमें थोड़ा विस्तार किया है। इसका और भी विस्तार कर सकते हैं, मास्टर शिक्षक, शिक्षक आइडियल शिक्षक कौन है वगैरह वगैरह। हाँ, तो यहाँ पर शिक्षक करता चलता फिरता, लाइब्रेरी, मास्टर शिक्षक, वंडरफुल शिक्षक, मुरली में नहीं है परंतु ठीक है, म्यूजियम, चलता फिरता म्यूजियम, लाइब्रेरी, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ, शब्दकोश। तो मास्टर शिक्षक, फिर दीपक, फिर उसके बाद में है वो आबू निवासियों के लिए थोड़ा वहां पर उसका विस्तार किया है कि संगठित रूप में सबको स्टेज पे जब आ जाएंगे क्षमा, तो वहां कहा तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, एक जगह का लाइट माइट का गोला हो, उसके आकर्षण से उसमें आते, उसके प्रकाश से, अंदर के प्रकाश से सभी आकर्षित होंगे। तो लाइट माइट का गोला, चैतन्य लाइट हाउस, और फिर आबू निवासियों के लिए क्या कहा, जब मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्टेज से, तुम इसकी स्मृति से स्टेज में आओगे तो फिर वो आगे पीछे घूमेंगे परवाने जैसे।
जी हजूर,
जी हजूर, कोई सेवा? ऐसा हुआ है अभी? अभी हुआ है थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा हुआ है। जी हजूर, कोई सेवा? तो ऐसा है। अच्छा, ये हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर ज्वाला स्वरूप, मैं ज्वाला स्वरूप हूँ, ये भी हो सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चैतन्य लाइट हाउस हूँ, लाइट माइट का गोला हूँ, और बाप की आशाओं का दीपक हूँ, और मास्टर सदगुरु और मास्टर शिक्षक, ये दो पार्ट रहे हुए हैं बाबा ने कहा। और संतुष्ट मूर्तियां, बोर्ड, लाड़कोट और निभाते हो। लाड़कोट पता नहीं कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा होगा ये, हिंदी में तो नहीं है। हाँ, वही विशेष प्यार, दुलार कहेंगे जिसको,
लाड़ प्यार,
लाड़ प्यार हिंदी, उधर लाड़कोट, इधर है देख रेख, उधर है रेख देख, सिंधी भाषा में रेख देख, इधर है देख रेख, उधर है रेख देख, धाम धूम, इधर है धूम धाम, उधर है धाम धूम। ये सिंधी भाषा में थोड़ा आगे, बुजरंग, बुजरंग, बुजरंग माता है कहते हैं नहीं ये लोग सब, बुजरंग बुजरंग माता है। अच्छा, बुजरंग बुजरंग माता है। तो संगम युग के जीवन की विशेषता क्या है?
अलौकिक
ये वो है नहीं, हाँ अलौकिक प्राप्ति और नशे में रहना, नहीं इसी नशे में, नशे और खुशी में रहना अलौकिक, इस प्राप्ति की, परमात्मा प्राप्ति के अलौकिक की नशे और खुशी में रहना, ये विशेषता है। नहीं हमारा ये हो गया था, सॉरी कहाँ चला गया। मधुबन निवासी हो गए, और कोई टाइटल है मधुबन निवासी? अरे बोलो ना फटाफट, बना दिया बस।
मुझे पूछे कि मैंने काम कर दिया पूरा।
फिर से बताओ
जो बताया वो बताओ। सबसे पहले टाइटल पूर्वज शुरू कर दो।
एक जगह ये भी टाइटल दिया है बाबा ने, दाता वरदाता का, आप दाता वरदाता हो। एक जगह ऐसा कहा है, पूर्वज आत्माओं, आत्माओं के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जगाना या फिर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने वाले, प्राप्तियों की प्राप्ति नहीं, दीप जलाने को कहा है, आशाओं के दीप जलाओ, आत्माओं के प्राप्ति के आशाओं के दीप जलाओ। और एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, मधुबन में कभी अंधकार हो नहीं सकता, हर समय दिवाली, आशाओं के दीप जगे हुए हैं, मधुबन में अंधकार हो नहीं सकता। जब मधुबन में अंधकार नहीं हो सकता तो मधुबन निवासियों के मन में भी कैसे अंधकार हो सकता है? तो हम लाइट हाउस है, हम माइट हाउस है, हम चैतन्य लाइट हाउस है, लाइट माइट का गोला है, हम मास्टर शिक्षक है, हम मास्टर सदगुरु है, हम रूहानी आकर्षण मूर्त है, हम कसागर के कंठे पर रहने वाले तकदीरवान आत्माएं हैं, हम न्यारा लोक है, अल्लाह लोक है, हमारी सूक्ष्म शक्ति, हमारी अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है,
मार्ग दिखाने वाले
हम मार्गदर्शक है। वैसे तो अभी बहुत सारे हो सकते हैं, आज की उस मुरली से खाली, तो इस मुरली से जो चीज हमें लेनी है वो है कि हम अपने आप को पूर्वज यदि समझते हैं तो ऐसी, इसके ऊपर सभी फिर से चिंतन करके आए, ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो वो आत्माएं करें और हम नाराज ना हो, ऐसी कौन सी 10 बातें हो जाए कि जिसमें हमें ये, या फिर ऐसा कहे कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं कि जिसमें हमें ये ज्यादा याद रखना है कि हम पूर्वज हैं। जैसे कोई गलती करता है, जैसे कोई हमारी बात नहीं मानता है, जैसे किसी को कोई काम दिया गया उसने बिगाड़ दिया, ऐसी और कौन कौन सी बातें, इसके ऊपर चिंतन करना है सभी ने कि हम यदि पूर्वज है तो हमें हमारी स्मृति कैसे होनी चाहिए। वही सारी बातें इसमें प्रैक्टिकल, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो जिस डिपार्टमेंट में है हम ये सोचे कि हम पूर्वज है, अब ये पूर्वजपन में हमें सबको लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो भी है। क्योंकि हम पूर्वज है तो सबके पूर्वज है, क्योंकि तभी हम पूर्वज का पार्ट वहीं तो प्ले करना पड़ता है कि हम सभी के पूर्वज है, चाहे हम अभी अभी आए हैं, नए हैं यहाँ पर, फिर भी हम पूर्वज है,
पूर्वज है तो ही पूर्वज।
क्योंकि ये पूर्वजपन का की जो स्मृति है ये हमें अचल अडोल बनाएंगे एक रीति से। पूर्वज अर्थात हमें उनकी पालना करनी है, दिख रहा है कि बहुत गलतियां कर रहे, सब कर रहे, नहीं करना चाहिए वो भी हो रहा है, तो हमें ये याद रखना है कि हम पूर्वज हैं, हमें सबकी पालना करनी है, सबकी गलतियों को समा लेना है, किसी की गलती को यहां से वहां, वहां से वहां नहीं करना है, और सबको मदद करना है, सबको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना है। यदि कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा है संजय भाई, ना अमृतवेला, ना मुरली, ना कुछ भी नहीं, आज मुरली में कहा है बाबा ना, ऐसे भी है वो भी तीखे हो जाएंगे एक दिन, देखो बाबा कितना पॉजिटिव है, बोला है आज मुरली में, बोला है जो कुछ काम नहीं करते वो तीखे हो जाएंगे, ग्रहचारी है ना वो बदल जाएंगी, उठ जाएंगी ग्रहचारी, अभी केकड़े है।
केकड़ों को देवता बनाने
केकड़ों को देवता ही तो बनाने आया है वो, देखो कितना पॉजिटिव है वो, बिल्कुल भी आशा नहीं उसकी छूटी है। तो ऐसे जो है ऐसे मंथर गति से धीरे 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 चलने वाले, और वो तो वो भी ठीक धीरे धीरे चलना वो तो माफ, परंतु दूसरा जाता है उसको पैर खींच के नीचे खींचते हैं। ये केकड़े की खास क्रैप्स जो होते हैं उसकी खासियत यही तो है। केकड़े जो है ना दे आर द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड। क्रैप्स जो होते हैं ना सबसे बड़े राजनीतिज्ञ वही होते हैं। एक आगे जाता है तो दूसरा उसको खींचता है। इसके लिए ऊपर से कवर रखने की जरूरत नहीं होती। एक बार कहानी बताई थी ना समुंदर वाली, एक आदमी होता है उसको खींचता है वो नीचे। तो ऐसे जो केकड़े ऐसो को वो आया है देवता बनाने, देन वो पॉजिटिव है पूरा, फुल पॉजिटिव, पूर्ण विश्वास कि ऐसा होगा। जो ठंडे है, बाबा ने शब्द प्रयोग किया ठंडे, जो बूढ़े ठंडे, जो जो ऐसे कुछ कुछ है ऐसे काम करते जैसे उनमें ताकत ही नहीं है, जैसे बूढ़े है, जैसे कुछ खाया ही नहीं है और ताकत ही नहीं है। दो पॉइंट कही है, जैसे कुछ खाया नहीं है और ताकत ही नहीं है। एक जगह का जैसे केकड़े और ठंडे हो गए, ऐसे अलग अलग जगह चार बातें कही है। हाँ तो ऐसी जो आत्माएं हैं तो ये कौन सोच सकता है, भगवान अपने संपूर्ण पूर्वजपन की स्मृति में, बुजुर्गपन पूर्वजपन वो प्रौढ़ता, तो हम भी ये सोचे कि चलो अभी कुछ नहीं कर रहे परंतु करेंगे। ये भी जो सुस्त महादेव है उनमें भी एक दिन बल भर जाएगा, जो अभी ठंडे है वो भी द्रुत गति का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये भाव निरंतर बना रहे कि हम बड़े हैं, पूर्वज है, अग्रज है, एल्डर है, एंसेस्टर है, पुराने हैं, आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, तना है, फाउंडेशन है, मूल है, मास्टर बीज है, दर्शनीय मूर्त हम सब है, मास्टर शिक्षक है, हमें देखकर सब सीखने वाले हैं और हमें सिखाना है सबको। ये दूसरा भी भाव, हमें सबको सिखाना भी, हम सीखने भी वाले हैं तो सिखाना भी, क्योंकि हम यदि नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा उन्हें। हम अभी अज्ञानियों की बात नहीं कर रहे थे हमारे आसपास वाले हैं उनके प्रति ये भाव रखना है कि हम पूर्वज हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस अज्ञानियों से नहीं होता है, आसपास वालों से होता है। इसके लिए मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, इस पार्ट को पक्का करना है। तो इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं। और एक बात जो कहनी थी, आज सुबह का जो टॉपिक्स जो दोनों हुए इनको फिर से करना है, जरूरी है, क्योंकि टॉपिक पूरे हुए नहीं नहीं टॉपिक पूरे हुए नहीं हाँ वो चलो एवर रेडी का पार्ट था, परंतु ये दोनों टॉपिक्स के पार्ट टू होगा अगले सैटरडे। ओखली में फिर दिया है तो मुंह से लोग कोर्ट से डरना क्या। अब इसमें इस पार्ट टू में वो सारी बातें नहीं कहनी है जो पार्ट वन में कही है। पार्ट टू में आपको ये ब्राह्मण जीवन या ये यज्ञ ओखली और ऐसी 10 अलग अलग मूसले, 10 कौन कौन सी मूसले हैं जिनसे डरना नहीं है उदाहरणों के साथ, ये है चर्चा। अभी जो की चर्चा वो बहुत ही प्रिलिमिनरी चर्चा थी और इसको कहेंगे कि वो चर्चा अच्छी थी, उसमें अच्छे उदाहरण भी थे, परंतु ओखली ये ब्राह्मण ये यज्ञ है तो इसमें कौन से वो मूसल है, इस आशय से इस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। और ये टॉपिक तो कहीं के कहीं चला गया था ये टॉपिक कहीं के कहीं चला गया था। ये जो कहावत है मुहावरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, ये व्यक्ति से संबंधित कहावत है कि वह व्यक्ति जो दिखावा बहुत करता है पर अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसी 10 व्यक्तियों की 10 दिखावे की बात है, 10 चीजें पर डिस्कशन करना है, वो उसका प्रॉपर डिस्कशन होगा। वो डिस्कशन नहीं चाहिए कि ये यज्ञ ऊंची दुकान है और यहाँ का ज्ञान पकवान है, ये तो शब्दशः अर्थ हुआ, उस कहावत का, उस मुहावरे का अर्थ है कि ये व्यक्ति जैसे, ये तो बहुत ऊंची दुकान और मीठा फीका पकवान है, मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, डिंगे मारता है, मियां मिठू है, परंतु अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ होगा कि ऐसी 10 व्यक्तित्व कहो, या 10 ऐसी कौन सी दिखावे की बातें हैं कि जो दिखावा है परंतु अंदर कुछ नहीं है, और वो नहीं होना चाहिए। तो उस आशय से वो टॉपिक होना चाहिए। तो आज का तो अच्छा था, वो पार्ट 1 कहेंगे, अभी जो होगा वो
पार्ट 2
होगा,
अगर उसमें फिर पार्ट 3।
और 2 टॉपिक और देने हैं, वो उसकी तैयारी करके रखो। तो 2, एक टॉपिक है अरविंद भाई के लिए, एक टॉपिक है कमलेश भाई के लिए। आज वो जो कमलेश भाई के लिए जो टॉपिक है वो इस मुरली से ही है, परंतु शब्द यहाँ के नहीं है, शब्द दूसरे हैं। वो जो टॉपिक है वो आप कब लेना, कभी भी तैयार करके रखो। 2 टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन में धूप में बाल सफेद करने की विधि या कला, धूप में बाल सफेद करना। अब पहले तो इसका अर्थ ढूंढना, यह बता दे।
बाल ही उड़ गए।
धूप में बाल सफेद करना अर्थात अनुभवी बनना, बुजुर्ग। तो ब्राह्मण जीवन में अनुभवी मूर्त कैसे बने, इसी का दूसरा शब्दों में है कि ब्राह्मण जीवन में धूप में बाल सफेद करने की कला कहो, विधि कहो। ये टॉपिक, इस पे तैयारी चालू कर दो। इस ये मुरली में वही लिखा है ना, बुजुर्गपन की स्मृति में रहो। दूसरा टॉपिक अरविंद भाई के लिए, आ बैल
मुझे मार
की विडंबना, आ बैल मुझे मार की विडंबना। और जो टॉपिक है उस टॉपिक के साथ में न्याय होना चाहिए। वो टॉपिक के साथ में न्याय होना अर्थात आबेल मुझे मान, अर्थात यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि ऐसी हम बहुत सारे, जैसे विघ्न है, बहुत सारे विघ्न हमारे ही आह्वान किए हुए, हमारे कमजोर संकल्प ही विघ्न बन रहे। तो इसी के आशय से ऐसी कौन सी 10 बातें हैं कि जो ब्राह्मण आत्मा खुद ही आह्वान करता है और फिर रोते कि ऐसा क्यों हुआ, किया धरा उनका ही है, धरता करता वही है। तो ये विडंबना है, जैसी पैराडॉक्स आयरनी। तो आ बैल मुझे मार की विडंबना, और इधर है ब्राह्मण जीवन में बाल सफेद
और
करने की विधि, किधर इधर अभी बीच के टॉपिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है सारा, इसके लिए अभी नहीं देंगे, अभी तो वो कॉमेंट्रीज होंगी ना बीच बीच में, तो उसका। अच्छा, ओम शांति। इन प्रश्नों के ऊपर कल मुरली चलेगी सुबह, तो कल